ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के अपोलिया में चल रहे G7 संपर्क सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। इस सम्मेलन में भारत को संपर्क देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। सत्र के दौरान विचार विमर्श में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया गया। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 11वीं उपस्थिति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में 5वीं बार शामिल हुए। भारत के अलावा G7 देशों के अध्यक्ष के रूप में इटली ने अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, केन्या, मॉरिटानिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राष्ट्र सहित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया है। श्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में आज कई देशों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा, जलवायु, डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, संपर्क और संस्कृति के क्षेत्र में साझेदारी और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। वे मेक इन इंडिया पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ रणनीतिक रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भेंट की। उन्होंने अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत तथा ब्रिटेन के बीच कार्यनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में संबंधों को सशक्त बनाने की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर वार्ता की। इस दौरान यूक्रेन की स्थिति और स्विट्जरलैंड द्वारा शांति के लिए आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन पर भी चर्चा हुई। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में इटली के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे G7 और इटली से एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहती हैं कि वे उस कथन को कभी स्वीकार नहीं करेंगी जो पश्चिम को बाकी सभी देशों के खिलाफ चाहता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये सत्र उन चुनौतियों के लिए समर्पित है जो बहुत दबाव वाली हैं, जिनमें एआई, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय मामले शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आज गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। श्री शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारी की समीक्षा के लिए 16 तारीख को एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय गृह सचिव, सेना, पुलिस, जम्मू कश्मीर प्रशासन और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में नई सरकार के गठन के पहले 100 दिन में स्वास्थ्य के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नड्डा ने टीकाकरण और स्वास्थ्य आपदा से संबद्ध प्रबंधन जैसे कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से जवाब मांगा है। सीबीआई और बिहार सरकार से भी 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में हुई भीषण वर्षा की आपदा पर विचार करने के लिए गंगटोक के मिंतो कगांग में एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित क्षेत्रों का लगातार आकलन करने का निर्देश दिया। इस बीच पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव सीएस राव ने पुष्टि की है कि सड़क अवरोधों के कारण उत्तरी सिक्किम के लाचुंग में फंसे 1200 भारतीय और 15 विदेशी पर्यटक सुरक्षित हैं। यूरोकप 2024 कल से शुरू हो रहा है। यूरोपीय चैंपियनशिप का 2024 सीजन का आगाज मेजबान जर्मनी और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबले से होगा। 15 जून से शुरू होने वाले यूरोकप में कुल 24 टीमें भाग लेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।